आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। महाकुंभ में आज त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने संगम में किया पवित्र स्नान। प्रयागराज में यातायात व्यवस्था बेहतर करने के लिए उठाए गए कई कदम। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी कल लखनऊ में 2 फ्लाईओवर का करेंगे उद्घाटन। राजधानी वासियों के लिए कई किलोमीटर का सफर होगा जाम मुक्त। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में 103 करोड़ रुपए की 116 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। और विश्व रेडियो दिवस पर आज नई दिल्ली में रेडियो महोत्सव का हुआ शुभारंभ। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव संजय जाजू ने कहा, रेडियो सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का विश्वसनीय स्रोत। नमस्कार, प्रदेश के समाचारों के साथ मैं तनवीर फातिमा और अब समाचार विस्तार से। प्रयागराज महाकुंभ मेले में देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है। आज छत्तीसगढ़ के राज्यपाल रमेन डेका और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विधानसभा अध्यक्ष की अगुवाई में 166 सदस्यीय दल के साथ संगम में आस्था की डुबकी लगाई। वहीं त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉक्टर माणिक साहा ने भी परिवार के साथ संगम में पवित्र स्नान किया। ब्रह्म मुहूर्त से शाम तक लगभग 75 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने त्रिवेणी में स्नान किया। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए खास इंतजाम किए गए हैं। और जानकारी हमारे प्रतिनिधि से।
सकुशल संपन्न हुए माघी पूर्णिमा के स्नान के बाद कल्पवासी और साधु संत मेला क्षेत्र से वापस होने लगे हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए शटल बसों के साथ साथ ई रिक्शा और ऑटो रिक्शा अब उपलब्ध रहेंगे। इन साधनों के जरिए श्रद्धालुओं को संगम क्षेत्र के करीब लाया और वहां से बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पहुंचाया जा रहा है। रेलवे यात्रियों की सुविधा के लिए 145 गाड़ियां चलाई गई हैं। CBSE और ICSE बोर्ड की शुरू हो रही बोर्ड परीक्षा के मद्देनजर प्रयागराज में प्रशासन ट्रैफिक व्यवस्था को विशेष रूप से मॉनिटर करेगा। आकाशवाणी समाचार प्रयागराज।
प्रदेश के नगर विकास एवं ऊर्जा मंत्री AK शर्मा ने आज महाकुंभ मेला क्षेत्र से लेकर सिविल लाइन चौराहे तक साफ सफाई की व्यवस्था का स्थलीय निरीक्षण किया। श्री शर्मा ने सफाई कर्मचारियों को बेहतर सफाई व्यवस्था के लिए प्रेरित किया। रक्षा मंत्री और लखनऊ के सांसद राजनाथ सिंह और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी कल राजधानी के मुंशी पुलिया और खुर्रमनगर फ्लाईओवर का उद्घाटन करेंगे। केंद्रीय मंत्री आउटर रिंग रोड का अवलोकन भी करेंगे। इस अवसर पर विकास नगर के मिनी स्टेडियम में आयोजित समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उपस्थित रहेंगे। रिंग रोड पर इन दोनों फ्लाईओवर के बन जाने से 4.5 किलोमीटर का सफर जाम मुक्त होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर नगर निगम के नवसृजित वार्ड खोराबार में कल्याण मंडपम का लोकार्पण किया। साथ ही 103 करोड़ रुपए की 116 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि देशी विधि से राप्ती नदी में लिक्विड वेस्ट और दूषित जल का शोधन किया जा रहा है, जिसका इस्तेमाल खेती में होगा।
लिक्विड वेस्ट का मैनेजमेंट कैसे होना चाहिए, आपको अगर देखना है नगर निगम का वह प्रोजेक्ट देखिए, जहां पे प्राकृतिक पद्धति के माध्यम से पहले जो जल एकदम काला है, लेकिन कुछ प्रोसेस के साथ गुजारने के बाद जब अंतिम छोर तक वो पानी पहुंचता है तो एकदम साफ हो जाता है। यानी अब राप्ती नदी में चीटी के सीवर का पानी नहीं गिरेगा, बल्कि उसकी प्रोसेस होने के बाद STP भी लगाई गई है, लेकिन जहां STP नहीं पहुंच पाई वहां देसी पद्धति से उसकी प्रोसेस करते हुए वह एक क्लीन वाटर में बदल करके खेती बाड़ी के लिए उपयोगी हो सकता है।
राज्यपाल और कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल अयोध्या के कुमारगंज में आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित भारतीय कृषि विश्वविद्यालय के 48वें कुलपति सम्मेलन में शामिल हुईं। इस अवसर पर उन्होंने अंतरराज्यीय विश्वविद्यालयों के साथ ही विदेशी विश्वविद्यालयों के साथ भी समझौता ज्ञापन करने की आवश्यकता पर बल दिया। राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को छात्रों के हितों को ध्यान में रखकर आपस में मिलकर विचार विमर्श करने पर भी जोर दिया। लोकसभा में आज नया आयकर विधेयक 2025 पेश किया गया। आयकर से संबंधित कानून को समेकित और संशोधित करने के उद्देश्य से ये विधेयक लाया गया है। अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नया आयकर विधेयक लाने की घोषणा की थी। उन्होंने ये भी घोषणा की थी कि सालाना 12 लाख रुपए तक की आय वाले लोगों को कोई आयकर नहीं देना होगा। ये समाचार आप आकाशवाणी लखनऊ से सुन रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉगिन कर सकते हैं। इसके साथ ही आप प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज़ ऑन एआईआर लखनऊ पर भी सुन सकते हैं। शबे बारात के मौके पर आज प्रदेश के विभिन्न जनपदों के कब्रिस्तानों की साफ सफाई की गई। मस्जिदों में रात में इबादत के लिए विशेष प्रबंध किए गए हैं। लखनऊ ईदगाह के इमाम खालिद रशीद फिरंगी महली ने शबे बारात को लेकर एडवाइजरी जारी की है। उन्होंने लोगों से अपील की है कि इस रात को इबादत में लगाएं और किसी भी तरह का उपद्रव करने से बचें। उन्होंने नौजवानों से आतिशबाजी न करने की अपील भी की है। परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम के आज प्रसारित तीसरे एपिसोड में टेक गुरु गौरव चौधरी और बैंकर राधिका गुप्ता ने छात्रों को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग की बुनियादी बातों से परिचित कराया। उन्होंने चैट जीपीटी और एआई इमेज जनरेशन टूल के व्यावहारिक अनुप्रयोगों की जानकारी दी। आज विश्व रेडियो दिवस है। इस वर्ष विश्व रेडियो दिवस का विषय है रेडियो और जलवायु परिवर्तन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व रेडियो दिवस पर लोगों को शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि समाचार और संस्कृति से लेकर संगीत और कहानी कहने तक रेडियो एक शक्तिशाली माध्यम है। सूचना और प्रसारण सचिव संजय जाजू ने कहा है कि रेडियो सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का एक विश्वसनीय स्रोत है। विश्व रेडियो दिवस पर आज नई दिल्ली में रेडियो महोत्सव 2025 का उद्घाटन करते हुए श्री जाजू ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात अब एक परिवर्तनकारी मंच बन गया है, जहां आम लोगों की आवाज सुनी जाती है। इस अवसर पर आकाशवाणी की महानिदेशक डॉ. प्रज्ञा पालीवाल गौड़ ने कहा कि लोगों को आकाशवाणी के कार्यक्रमों की सामग्री के साथ साथ समाचारों पर भी भरोसा है। विश्व रेडियो दिवस पर अपने संदेश में प्रसार भारती के अध्यक्ष नवनीत कुमार सहगल ने कहा कि समाचार और सूचना का प्रसार करते हुए रेडियो राष्ट्र के सांस्कृतिक और आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। श्रोताओं का अभिवादन करते हुए प्रसार भारती के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गौरव द्विवेदी ने कहा कि आकाशवाणी जहां भारत की समृद्ध संस्कृति और परंपराओं का वाहक रहा है, वहीं इसने भारत में वैज्ञानिक प्रगति की यात्रा से भी लोगों को जोड़ा है। प्रदेश के अमरोहा जिले के गजरौला के राम सिंह बौद्ध को रेडियो मैन के नाम से भी जाना जाता है। उन्होंने मन की बात रेडियो संग्रहालय तैयार किया है। इस संग्रहालय का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपने मन की बात कार्यक्रम में उनका जिक्र कर चुके हैं। राम सिंह बौद्ध ने कहा कि अपनी बात आम लोगों तक पहुंचाने का रेडियो सशक्त माध्यम है।
गांव कस्बों में आज भी रेडियो सुना जाता है, जो सबसे सस्ता और सुलभ सुविधाजनक, जिनके पास अक्सर ज्ञान नहीं है, जो अखबार नहीं पढ़ सकते लेकिन रेडियो सुन सकते हैं, जो लोग अपनी दृष्टिहीनता के कारण खबर नहीं देख सकते, टेलीविजन नहीं देख सकती, रेडियो उनका भी साथी है। इसी उपयोगिता को देखते हुए मैंने अपने यहाँ रेडियो संग्रहालय स्थापित किया है।
अयोध्या श्री राम मंदिर में विराजित रामलला के मुख्य अर्चक आचार्य सत्येंद्र दास को आज पावन सलिला सरयू में जल समाधि दी गई। इस मौके पर संत महात्मा, जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक बड़ी संख्या में उपस्थित रहे। केंद्र सरकार के आयकर विभाग के तहत आने वाले केंद्रीय राजस्व, क्रीड़ा और सांस्कृतिक परिषद के उत्तरी क्षेत्र की स्पोर्ट्स मीट 2024-25 की शुरुआत आज से लखनऊ में हुई। आयकर विभाग की अपर आयुक्त डॉ. प्रीति सिंह ने बताया कि आयकर, कस्टम्स और संबंधित विभागों के 850 खिलाड़ी विभिन्न खेलों में हिस्सा ले रहे हैं। उत्तराखंड में चल रहे 38वें राष्ट्रीय खेलों में 56 पदक जीतकर पदक तालिका में उत्तर प्रदेश 13वें स्थान पर पहुंच गया है। आज हुए पुरुष हॉकी प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में उत्तर प्रदेश को हार के बाद रजत पदक से संतोष करना पड़ा। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। महाकुंभ में आज त्रिपुरा के मुख्यमंत्री डॉ. माणिक साहा और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने संगम में किया पवित्र स्नान। प्रयागराज में यातायात व्यवस्था बेहतर करने के लिए उठाए गए कई कदम। केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और नितिन गडकरी कल लखनऊ में 2 फ्लाईओवर का करेंगे उद्घाटन। राजधानी वासियों के लिए कई किलोमीटर का सफर होगा जाम मुक्त। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में 103 करोड़ रुपए की 116 विकास परियोजनाओं का किया लोकार्पण और शिलान्यास। और विश्व रेडियो दिवस पर आज नई दिल्ली में रेडियो महोत्सव का हुआ शुभारंभ। सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सचिव संजय जाजू ने कहा, रेडियो सूचना, शिक्षा और मनोरंजन का विश्वसनीय स्रोत। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का यह बुलेटिन समाप्त होता है। अगला बुलेटिन रात 8 बजे FM पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।